एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Oh, oh, oh.
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खोल दे और तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे। मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उन्हें तेरा वचन सुनने और समझने के लिए मदद कर और उन्हें तेरा राह में चलने के लिए मदद कर। पिता परमेश्वर मेरे संग हो, तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचन को तेरे सामर्थ के द्वारा प्रस्तुत कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है, क्या पाप से पहले मृत्यु था? आइए हम बाइबल से इस विषय पर सीखें। आइए हम पौलुस के पत्री रोमियो 6:23 को देखें। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्यारो, आदम और हवा के पतन के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में मृत्यु ने इस ग्रह पर पहली बार प्रवेश किया। इसका प्रभाव न केवल मनुष्यों पर पड़ा बल्कि जानवरों, पौधों और समस्त सृष्टि पर भी पड़ा। परमेश्वर की मुक्ति की योजना में मानवता और संपूर्ण सृष्टि दोनों शामिल हैं। इन जीवाश्मों का क्या अर्थ है? जो लोग सृष्टि की उत्पत्ति में विश्वास करते हैं उनके सामने एक चुनौती धर्मनिरपेक्ष भूवैज्ञानिकों द्वारा जुटाए गए वे प्रमाण हैं जो बताते हैं कि इस ग्रह पर जीवन मानव के प्रथम उद्भव से लाखों वर्ष पहले से मौजूद हैं। यह सत्य है कि मानव जीवाश्म केवल भूगर्भीय स्तंभ, पृथ्वी की सतह को ढकने वाली जीवाश्म युक्त चट्टानों की परत के शीर्ष के पास ही दिखाई देते हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के पौधे और जीव जंतु नीचे की चट्टानों में पाए जाते हैं। यदि इन चट्टानों के काल निर्धारण को स्वीकार किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि जटिल जीवन रूप मानव से करोड़ों वर्ष पहले अस्तित्व में थे। इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु मानव से पहले अस्तित्व में थी, जिसका अर्थ है कि मनुष्य का पतन वह घटना नहीं थी जिससे वास्तव में मृत्यु आई। कुछ लोगों ने इस चुनौती से बचने की कोशिश यह कहकर की है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि निचले स्तर के पौधे और पशु जीवन रूप अस्तित्व में थे और मनुष्य से पहले मर गए थे। आज के पाठ में हम बाइबल के प्रमाणों के प्रकाश में इन मुद्दों पर विचार करेंगे। क्या जानवर मायने रखते हैं? उत्पत्ति 9:8-17, मत्ती 6:25-26 और लूका 12:22-24 क्या कहती है? उत्पत्ति 9:8-17 जानवरों और उसकी बाकी सृष्टि के प्रति परमेश्वर के देखभाल के बारे में बताता है। इस बात के कई संकेत हैं कि जब परमेश्वर ने पहली बार अपने जीवों को बनाया था तब वे उसके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। वह चाहता था कि वे फूलें, फलें और बढ़े। उसने उनके भोजन और देखभाल का प्रबंध किया। उसने उन्हें मनुष्य के संरक्षण में रखा और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने जो बनाया था उसे बहुत अच्छा घोषित भी किया था। यह दिलचस्प है कि पतन के बाद परमेश्वर ने जानवरों को सीधे तौर पर सांप नहीं दिया। सांप का एक अपवाद था। हालांकि आदम के पतन के परिणाम स्वरूप उन्हें कष्ट सहना पड़ा और जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने उन्हें मानव जाति के साथ की गई वाचा में शामिल किया। यह हम प्राप्त करते हैं उत्पत्ति 9:9-10 में। यीशु के लिए पशु जगत बहुत महत्वपूर्ण थे, यह हम पाते हैं मत्ती 6:25-26 में और लूका 12:22-24 में पढ़कर हम पाएंगे। हम अक्सर मत्ती 6:25-26 और लूका 12:22-24 का हवाला परमेश्वर के प्रेम के प्रसन्न के प्रमाण के रूप में देते हैं। यदि वह एक तुच्छ गौरैया या कौवे की परवाह करता है तो निश्चय ही वह हमारी भी परवाह करता है ना? फिर भी यह भूलना आसान है कि नए नियम का सृष्टिकर्ता वही है जो पुराने नियम का सृष्टिकर्ता है। एलन वाइट हमें याद दिलाती हैं कि उद्धारकर्ता वही था जिसने जंगल में इब्रानियों को शिक्षा दी थी और यीशु द्वारा दी गई व्यवस्था के दयालु प्रावधान निम्न स्तर के जानवरों तक भी विस्तारित थे जो अपने अभाव और पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। यह हम पाते हैं लिखा है युगो युगो की अभिलाषा की पुस्तक उसका पृष्ठ 500 में। बाइबल सिखाती है कि पशु जगत द्वारा अनुभव किए गए कष्ट और क्षय का मानव जाति के पतन से सीधा संबंध है। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि जीवाश्म रिकॉर्ड मानव जाति के निर्माण से लगभग 60 करोड़ वर्षों पहले के पशु कष्टों को दर्शाते हैं। हमारे सामने सबसे अधिक कष्टदायक समस्याओं में से एक पशु जगत में पीड़ा की समस्या है, खासकर यदि कोई यह मानता है कि पशु जगत मानव से लाखों वर्ष पहले अस्तित्व में था। बाइबल बताती है प्यारो रोमियो 8:18-22 में कि जानवरों की पीड़ा सीधे तौर पर मानव जाति के पतन से जुड़ी थी। यह कहना कि सृष्टि और आदम व हवा के पतन से लाखों साल पहले जानवर जीवित और मरते थे न केवल रोमियो 8 के सिद्धांत का खंडन करता है बल्कि इस तथ्य के भी विपरीत है कि ईश्वर एक दयालु सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता है। पशु का राज्य का भाग्य आदम से बंधा हुआ है। उत्पत्ति 1:28 में हम यह पाते हैं और 2:19-20 में भी। जानवरों के संबंध में आदम की क्या भूमिका थी इसे हम इन पदस्थलों में पाएंगे। बाइबल आदम और जानवरों के बीच एक घनिष्ठ करीबी रिश्ते का चित्रण करती है। उसे उन पर शासन करने और फिर उनका नाम रखने के लिए कहा गया है। इन सब का क्या मतलब है? प्यारों, आदम को जानवरों की देखभाल का जिम्मा सौंपकर परमेश्वर ने उसे हवा और उनके संतानों को कुछ जरूरी सबक सिखाए। सबसे पहले इससे उन्हें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते के लिए कदरदानी का एहसास हुआ। जानवरों की देखभाल करके हमारे पहले माता पिता ने परमेश्वर को मिलने वाली खुशी और उनके प्रति परमेश्वर के प्रेम के लिए कदरदानी का अनुभव किया। दूसरा, इसने उन्हें जिम्मेदारी, परस्पर निर्भरता और सेवा का पाठ पढ़ाया। इन अवधारणाओं को निम्नलिखित कथन में खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। यहाँ हम पाते हैं, यहाँ लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में सभी वस्तुएं यह घोषित करती हैं कि जीवन का महान नियम सेवा का नियम है। सेवा का यही नियम प्रकृति की सभी चीजों पर अंकित है। आकाश के पक्षी, मैदान के जानवर, जंगल के पेड़, पत्ते, घास और फूल, आकाश का सूर्य और प्रकाश के तारे, सभी की अपनी अपनी सेवा है। झील और सागर, नदी और जल स्रोत सभी देने के लिए तत्पर रहते हैं। दो और तुम्हें दिया जाएगा, यीशु ने कहा। यह पवित्र शास्त्र के पन्नों से कम स्पष्ट रूप से प्रकृति में नहीं लिखा गया है। यह हम शिक्षा की पुस्तक पृष्ठ 103 में प्राप्त करते हैं। यह परस्पर निर्भरता और सेवा का नियम ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि का अभिन्न अंग है जिसमें वनस्पति और पशु जगत दोनों शामिल हैं। जानवरों के मामले में उन्हें मानव जाति की देखभाल और प्रेम की आवश्यकता थी। बदले में मनुष्य देखेंगे कि जानवर भी उन्हें बहुत कुछ प्रदान करते हैं जिसमें प्रेम भी सबसे महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, ईश्वर ने मनुष्यों और जानवरों को एक सहजीवी संबंध में बनाया है। उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता थी। ईश्वर द्वारा रचित पदानुक्रम में प्रत्येक की अपनी भूमिका थी। ध्यान दें कि मनुष्य और जानवर दोनों ईश्वर की श्वास साझा करते हैं। यह निर्मित परस्पर निर्भरता ही एक कारण है कि यह धारणा कि पशु मानव जाति से लाखों वर्ष पहले अस्तित्व में आए बाइबल के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती है। पतन से पहले और बाद की प्रकृति कैसा है? उत्पत्ति 1:30, 9:3-6 और यशायाह 11:6-9 और यशायाह 65:25 में हम पाएंगे। बाइबल के प्रमाण बताते हैं कि पतन से पहले कोई मांसाहारी जानवर नहीं थे। उत्पत्ति 1:30 के अनुसार सभी जानवरों का मूल आहार हर हरा पौधा था। जैसा कि एलन वाइट कहती हैं, किसी भी जानवर को भोजन के लिए दूसरे जानवर को नष्ट नहीं करना चाहिए। मांसाहारी जानवरों के बारे में हमारी वर्तमान समझ से ऐसा लगता है कि उनके लिए शाकाहारी भोजन पर जीवित रहना संभव नहीं था। मांसाहारी हमारे परिस्थिति की तंत्र में खाद्य श्रृंखला का एक अनिवार्य हिस्सा है। मैला ढोने वाले जीव प्रकृति की कचरा निपटान प्रणाली हैं। वे मृत शरीरों को साफ करने में मदद करते हैं। हालांकि बाइबल और भविष्यवाणी की आत्मा स्पष्ट रूप से बताती हैं कि शुरुआत में ऐसा नहीं था। इससे पता चलता है कि वनस्पति और पशु जगत में बड़े बदलाव हुए, ऐसे बदलाव जो हमारे वर्तमान समय से परे हैं। बाइबल पाप रहित संसार में पशु साम्राज्य की प्रकृति का वर्णन यशायाह 11:6-9 में करती है तथा यशायाह 65:25 में भी करती है। जीव विज्ञानियों को यह समझना मुश्किल लगता है कि मृत्यु के बिना जीवन कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उनके लिए मृत्यु वर्तमान जीवन चक्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर होने वाले परिवर्तन में न केवल मानवता बल्कि संपूर्ण सृष्टि भी शामिल होगी, कहता है रोमियो 8:19-21। सृष्टि स्वयं परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है ताकि वह भी क्षय के बंधन से मुक्त हो सके। उत्पत्ति 6:11, 12 और 9:2 में हम पशु साम्राज्य पर परिवर्तन को हम पाते हैं। पतन ने सेवा की व्यवस्था को प्रभावित किया। पाप के अभिशाप के तहत पूरी प्रकृति को मनुष्य के चरित्र और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के परिणामों की गवाही देनी थी। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने उसे पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों का शासक बनाया था। जब तक आदम स्वर्ग के प्रति वफादार रहा, पूरी प्रकृति उसके अधीन थी। लेकिन जब उसने ईश्वरीय नियम के विरुद्ध विद्रोह किया तो निम्न प्राणी उसके शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे थे। मनुष्य के पाप के कारण ही सारी सृष्टि मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, रोमियो 8:22। इस प्रकार दुख और मृत्यु न केवल मानव जाति पर बल्कि पशुओं पर भी आ पड़ी, पैट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स पुस्तक 4:43 में हम पाते हैं। आदम का जानवरों के साथ रिश्ता का एक राजा और उसकी प्रजा रिश्ते से बहुत अलग नहीं था। एक तरह से जानवर आदम की प्रजा थे। बाइबल में खासकर दूसरा राजाओं और दूसरा इतिहास की किताबों में एक सीख मिलती है कि जब राजा या दूसरे नेता धर्मी होते हैं तो उनकी प्रजा धार्मिकता से उनका अनुसरण करती है, लेकिन जब नेता दुष्ट होते हैं तो प्रजा दुष्टता से उनका अनुसरण करती है। बाइबल उत्पत्ति 1 से पहले इस दुनिया में किसी भी रचना के बारे में कुछ नहीं जानती। उस अध्याय में हिब्रू का सबसे अच्छा पाठ इसकी अनुमति नहीं देता है। इस ग्रह से संबंधित एकमात्र रचना उत्पत्ति 1 में दर्ज है। वहां दिए गए विवरण के अनुसार पौधे मनुष्यों के निर्माण से 3 दिन पहले बने थे, उत्पत्ति 1:11 और 12। पद में पाते हैं, जबकि पक्षियों और जानवरों को पांचवें और छठे दिन बनाया गया था। उत्पत्ति 1:20-25 में मिलता है। बाइबल में इस विचार का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पतन से लाखों साल पहले डायनासोर रहते थे और मर गए थे। ऐसा सिद्धांत परमेश्वर के वचन को चुनौती देगा और उसकी रचना और पाप, दुख और मृत्यु के बीच के संबंध के बारे में उसके चरित्र को गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा। बाइबल मृत्यु की उत्पत्ति के बारे में उत्पत्ति 2:17 में बतलाती है। बलिदान परमेश्वर द्वारा मनुष्य को उसके पाप की एक सतत याद दिलाने, उसके पापों के प्रति पश्चाताप की स्वीकृति और प्रतिज्ञा किए गए मुक्तिदाता में उसके विश्वास की स्वीकारोक्ति के रूप में नियुक्ति किया गया था। प्यारो, उनका उद्देश्य पतित जाति पर इस गंभीर सत्य का प्रभाव डालना था कि पाप ही मृत्यु का कारण है। आदम के लिए पहला बलिदान चढ़ाना एक अत्यंत पीड़ादायक समारोह था। जीवन लेने के लिए उसका हाथ उठाना आवश्यक था, जो केवल परमेश्वर ही दे सकता था। यह पहली बार था जब उसने मृत्यु देखी थी और वह जानता था कि यदि वह परमेश्वर का आज्ञाकारी होता तो मनुष्य या पशु की मृत्यु ना होती। पैट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स पृष्ठ 68 में हमें यह मिलता है। एलन व्हाइट ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि जीवाश्म अभिलेखों में दबे हुए जानवर बाइबल के सृष्टि सप्ताह से लाखों साल पहले के पशु जीवन के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन बातों के बारे में बाइबल का इतिहास पर्याप्त व्याख्या प्रस्तुत करता है। जल प्रलय के समय पृथ्वी की सतह टूट गई, उल्लेखनीय परिवर्तन हुए और पृथ्वी की पपड़ी के पुनर्निर्माण में पहले से मौजूद जीवन के कई प्रमाण संरक्षित हो गए। प्यारो, बाइबल के अनुसार सभी जीवों की रचना परमेश्वर ने ही की है। पतन के बाद तक सृष्टि में मृत्यु का अस्तित्व नहीं था। परिणाम स्वरूप पूरी सृष्टि, जिसमें पशु जगत भी शामिल है, मृत्यु के अधीन है। परमेश्वर की संतानों के साथ ही सृष्टि को भी क्षय के बंधन से मुक्त किया जाएगा। इसलिए आइए हम उस दिन का आशा और पाठ जो है, जो परमेश्वर हमें नया सृष्टि के द्वारा नई पृथ्वी देने चाह रहा है। हम जानते हैं कि मनुष्य के पाप के द्वारा इस पतन जगत में बहुत सारे श्राप आए और हमें बहुत सारे मुश्किलें, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जगत और नया जीवन देने जा रहा है। आइए हम उस जगत के लिए तैयार हों। परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, तू हमारा सृष्टि करता है, तू ही ने सब जीवों को और हम मनुष्य जाति को अपने सामर्थ्य से आदि में बनाया और तू हमारा भलाई चाहता है। हम पाप में गिरे, लेकिन हमें पाप से बचाने के लिए अपना बेटा को बलिदान किया, उसके लहू से हम पाप से क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और तू हमें नया दुनिया, नया पृथ्वी में नया जीवन देना चाहता है। पिता परमेश्वर, उसको पाने के लिए हम अपने मनों को तैयार करें।
साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूँ गौरव चौहान
और मैं हूँ सारा मंडोरा।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।